आयत नंबर 8 से लेकर 12 तक आप देखें कि पहले बात हो रही थी खानदान की, अब बात होने लगी कौमों की। अब बताया जा रहा है, मुसलमानों को तंबीह की जा रही है कि जो कौमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह उनको भी सख्त सजा देता है, क्योंकि घर बिगड़ते हैं, खानदान बिगड़ते हैं तो सोसाइटी बिगड़ती है। जब मुआशरा और सोसाइटी बिगड़ती है क्या होता है कि पूरी कौमें बिगाड़ और जवाल की गहराइयों में जाकर गिर जाती हैं, और जब कौमें जो हैं वो जवाल का शिकार होती हैं तो फिर अल्लाह के अजाब का कोड़ा जो है वो बरसता है। वकअइम मिन करियतिन, कहा और कितनी ही बस्तियां हैं, एक नहीं दो नहीं, वकअइन और कितनी ही। जैसे का जो है किसके लिए आता है, माने अयू कौन सी, वकअइन फिर ये मानी देता है और कितनी ही, मिन करियतिन बस्तियों में से, अतत शर्तशी की अन से। अब आप देखें कि अतत का रूट है आइन ता वो, और आइन ता वो जो है इसके मानी होते हैं क्या, मानी होते हैं कि सरकशी इख्तियार करना जो तकबर की बिना पर हो, ऐसी सरकशी जो तकबर की बिना पर हो। यदुल्लु अला इस्तिकबारा, ये किबर पर दलालत करता है जो अतऊ है ना, और अगर इसके अंदर अन आ गया है तो अन की वजह से एराज का मफहूम पैदा हो गया है। अतऊ अन के मानी फिर क्या है, आरत्ता, कि सरकशी की वजह से उन्होंने अपने रब के हुक्म से एराज किया, किसी और का रब नहीं था। अतत अन अम्र रब्बिहा, और सिर्फ रब नहीं पर रसूल ही, और उसके रसूलों की, उसके रसूलों के अहकाम से भी उन्होंने सरकशी इख्तियार की। इनका ये गुनाह इतना बड़ा था, इतना शदीद था, फहासबनाहा, तो फहासबनाहा के अंदर सख्त गिरफ्त का मफहूम पाया जाता है। अल्लाह ने भी इन पर सख्त गिरफ्त की, कैसी, हिसाबन शदीदन, शदीद मुहासबा, सख्त मुहासबा। और हमें अल्लाह ताला से क्या दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा, तो अल्लाह ने उनका सख्त मुहासबा किया, और क्या किया, वअज़बनाहा, और उनको अजाब दिया। अज़बनाहा के अंदर भी आता है कि सख्त अजाब, और फिर आगे मजीद उसकी वजाहत की जा रही है, अजाबन नुकरा, और नुकरा जो है नून का फ्रा, इसके मानी है शदीद के, इसके मानी है हौलनाक के, और आप ये लफ्ज जो है पहले ही पढ़ चुकी हैं। और जो है वो जैसे मुनकर नकीर जो के सख्त मुहासबा करने वाले हैं, मुनकर नकीर कैसे हैं, सख्त मुहासबा करने वाले हैं, सख्त पकड़ने वाले हैं। फिर आपने जो है वो सूरत काहफ में भी पढ़ा था, ये लफ्ज आपने सूरत काहफ में भी पढ़ा था कि जो है वो जब उन्होंने जो है वो क्या किया था कि जो कश्ती थी, जो किश्ती थी उसमें सुराख कर दिया था, तो उस वक्त जो है मूसा अलैहिस्सलाम को जो है ये बात बड़ी ही अजीब लगी थी, है ना, उन्होंने कहा था कि आपने ये जो मामला किया है ये तो बड़ा ही अजीब मामला किया है। वहां पे आपने जो अल्फाज पढ़े, इमरा उसरा, और कश्ती में सुराख जब किया था तो उसको कहा था कि लकद जेत शैन इमरा, और इमरा लफ्ज जो है वो भी आता है कि जिसके मानी है हैबतनाक काम, हैबतनाक काम। फिर उसके बाद उन्होंने जो है जब लड़के को कत्ल कर दिया था तब मूसा अलैहिस्सलाम ने खिजर अलैहिस्सलाम से कहा था लकद जेत शैन नुकरा, ये है सूरत कहफ की आयत नंबर 74। तो कत्ल के ऊपर आप इतना हैरान परेशान हुए कि कहने लगे कि ऐसा बुरा काम किया है, इतना बड़ा और बुरा काम कि जिसकी शरीयत में गुंजाइश ही नहीं थी, कत्ल कर दिया। तो ये है असल बात कि नुकरा इतनी बड़ी बात है, इतने गुनाह की बात है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनका सख्त उनको अजाब दिया, शदीद हौलनाक, फजाकत वबाल अमरेहा, फिर चखा उन्होंने अपने मामले का वबाल। और वबाल के मानी आप पढ़ी चुकी हैं, क्या मानी होते हैं वबाल के, जैसे बोझ के लिए आता है, मुसीबत के लिए आता है, कि फिर उन्होंने जो भी ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की थी, रसूलों का इनकार किया था, और उसके वबाल का मजा उन्होंने क्या किया, फिर चख लिया, और फिर उसका मजा तो चखना ही था ना, फिर सरकशी का अंजाम तो उनको मिलना ही था, فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا وكان عاقبت, اور کانا ہے عاقبت انجام, اور کانا کے معنی تھا کے بھی ہوتے ہیں, اور تھا انجام. اور آپ کو پتہ ہی ہے عین قاف با جو ہے پاؤں کی ایڑی کو کہتے ہیں, اور اس سے پیچھے کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے کسی چیز کے پیچھے کوئی چیز, جیسے اس کا انجام عاقبت, تو پھر ان کا انجام کیسا تھا؟ امریہا, ان کے کام کا خسرہ, خسارہ ہی خسارہ. خسرہ یہاں پہ مصدر ہے. تو بڑا ہی سخت تھا ان کے جو برائیاں اور گناہ جو تھے اس کا انجام. کیسا خسرہ؟ گھاٹا ہی گھاٹا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے, عدا گن گن کر رکھا ہے, جیسے کسی کے آنے سے پہلے کوئی بہت تیاری کی جائے, تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ گن گن کر رکھی ہے. کیا چیز؟ عذابا شدیدا, شدید عذاب. فاتقوا اللہ, پس ڈرو اللہ سے, یا اولی الالباب, اے صاحب عقل والو. فرمایا تیار کیا اللہ نے لہم ان کے لیے عذاباً عذاب شدیداً سخت, تو اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. گویا کہ یہ اللہ تعالی سے جو ہے وہ اتنی سخت سزا پائیں گے کہ پہلے سے تیاری کر رکھی ہے. ایک تو ہے نا انسان کسی کو مارنے کی تیاری کرے, اور ایک ہے اللہ تیاری کرے. تو یہاں پہ بھی یہ بڑی سخت تنبیہ ہے, بہت زیادہ ڈرایا جا رہا ہے. پھر فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, پس ڈرو اللہ سے اے عقل والو. تو عقل والے کون ہوتے ہیں؟ جو متقی ہوتے ہیں. لب کیا ہے؟ خلاصہ. دماغ کے لیے, عقل کے لیے آتا ہے, دماغ کے لیے بھی آتا ہے. تو اے عقل والو اللہ سے ڈرو. فا کا مطلب کیا ہے؟ پس. یعنی ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے کہ اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرو, ورنہ گھر بھی بگڑتے ہیں اور خاندان ہی نہیں بگڑتے, قومیں بھی بگڑ جاتی ہیں. اور بات طلاق کی ہو, عدت کی ہو, سکونت کی ہو, نفقے کی ہو, یا بچے کی رداد کی ہو, یا قوموں کی بگاڑ کی ہو, کسی بھی چیز میں اگر تقوی کا خیال نہیں ہوگا تو اللہ بہت سخت پکڑے گا. الذین آمنوا, تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ تقوی والے کون ہیں اور عقل والے کون ہیں, وہ لوگ جو ایمان لائے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا, بے شک نازل کیا ہے اللہ نے تمہاری طرف ذکر. تو یہ جو تقوی والا کی بات ہے اور عقل مندی کی بات ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں, اور جو اللہ نے ذکر نازل کیا ہے اس سے جو ہے وہ ہدایت پاتے ہیں. تو یہ جو اللہ نے ذکر نازل کیا ہے, ذکر کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کو ذکر کہتے ہیں. مثلا آپ جو ہیں پہلے بھی یہ بات پڑھ چکی ہیں کہ جیسے قرآن کو ذکرہ کہا, یا جس ذکر کہ قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد جو ہے وہ رسول ہے, رسول کی زندگی, کیونکہ رسول کی زندگی سراپا ذکر الہی ہے, سرتاپا رسول جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور آپ یہ بات بھی پڑھ چکی ہیں کہ انما انت مذکر, سورۃ غاشیہ میں, غاشیہ کی آیت جو ہے 21 میں, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ جو ہیں ایک مذکر ہیں. بس آپ کی یہی حیثیت ہے, دروغہ کی حیثیت نہیں ہے. تو بے شک اللہ نے تمہارے لیے ذکر نازل کیا ہے, رسولاً رسول. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں قرآن مراد ہے, کیونکہ آگے پھر رسول کا ذکر آیا ہے. اللہ نے تم پر ذکر نازل کیا, تمہارے لیے ذکر نازل کیا, تمہاری طرف ذکر کو بھیجا. تو ذکر کس کے پاس آیا تھا؟ رسول کے ذریعے, رسولاً رسول, یتلو علیکم. اور وہ رسول جو ہیں وہ اس ذکر کی کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں تمہارے اوپر, اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, اس کا اتباع بھی کرتے ہیں. آیات اللہ, اللہ کی آیات, مبینات روشن. تو یہ جو اللہ کی کھلی کھلی آیات ہیں جو خود روشن ہیں اور دوسروں کے دلوں کے اندھیروں کو اور سوسائٹی کے اندھیروں کو روشن کر دیتی ہیں, تو ان آیات کا اور ذکر کا مقصد کیا ہے؟ یہ یخرج, لام لام علت ہے, مقصد یہ ہے, علت یہ ہے, یخرج الذین, کہ کہ نکال دیں ان لوگوں کو آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیے، کہاں سے نکالیں؟ من الظلمات، اندھیروں سے. ظلمت واحد ہے، ظلمات اندھیرے جمع ہے، اور توحید تو ایک ہی ہے، نور کا راستہ اسلام کا راستہ ایک ہی ہے، اور ظلمتیں بہت سی ہیں، تاکہ جو ہے اندھیروں سے نکال دے. اور اندھیرا ہے شرک کا اور کفر کا اور حسد کا اور بدراہی کا اور زنا کا اور بدعتوں کا اور نفس کی پوجا اور زنجیریں اور رسم و رواج اور معاشرتی معاشی ہر طرح کے جو اندھیرے ہیں ان سے نکال دے. اور کہاں نکال کر لے کر جائے؟ الی النور، نور کی طرف. اور نور کیا ہے؟ دین اسلام، قرآن. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لائے اللہ پر، وَيَعْمَل صَالِحًا، اور عمل کرے نیک. دیکھ لیں، آغاز میں بھی ایمان اور عمل صالح کی بات تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات تھی، اینڈ پر بھی وہی بات ہے کہ یُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا اس کو جَنَّاتٍ، جنتوں میں، باغات میں. اور وہ باغات کس کے ہیں؟ جنتوں کے ہیں. تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ایک نہر نہیں انہار، بہت سی نہریں ان کے نیچے بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ. اس کے کیا معنی ہیں؟ کہ وہ ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو ہے لفظ استعمال ہوا ہے خالدینہ کا، تو خا لام دال جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طویل مدت تک بلا تغیر ایک ہی حالت میں رہنا. کیا معنی ہے؟ کہ عرصہ دراز تک، لمبی مدت تک حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہے. خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، طویل مدت، لمبی مدت، لمبا زمانہ، فیہا اس جنت میں، ان جنتوں میں. پھر ابدا آ گیا، ابدا کے معنی کیا ہیں؟ یہ بھی ازل اس کا اپوزٹ ہے، ضد اس کی ازل ہے اور ابد. تو زمانہ دراز کے پھیلاؤ کو ابد کہتے ہیں، مسلسل جاری رہنے والی مدت. یہ ظرف زمان ہے، مستقبل میں نفی اور اثبات دونوں کی تاکید کے لیے آتا ہے. تو اگر خالدینہ آ گیا پھر اس کے ساتھ ابدا آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اس سے تاکید در تاکید کے پھر مفہوم جو ہے وہ پیدا ہو گیا. ابدا سے پہلے اگر خلدا آ جائے تو مزید تاکید ہے. تو یہ ہے اصل میں بات کہ دنیا میں سب چیزیں عارضی ہیں، ناپائیدار ہیں، ملتی نہیں ہیں، بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی بہترین ہے، اتنی پائیدار ہے، اور اس کی نعمتیں بھی کہ جو جنتی اس کے اندر ہوں گے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ لمبی مدت زمانہ دراز تک اس کے اندر رہیں گے، کوئی ختم نہیں ہوگا، کوئی اینڈ نہیں ہوگا. قد احسن اللہ له رزقا، بے شک بہت اچھا کیا اللہ نے اس کے لیے رزق. تو یہ کس کے لیے رزق کی بات ہو رہی ہے؟ وہ لوگ جو کہ متقی ہیں، ایمان اور عمل صالح لانے والے ہیں. تو یہ لوگ جب جنت میں جائیں گے نا تو آخرت میں اللہ نے جو ان کے لیے رزق تیار کر رکھا ہے بہترین رزق ہے. تو دنیا کی تنگی اور دنیا کے مسئلے مسائل اور پریشانیاں جو ہیں اس کے بارے میں مت سوچو، بلکہ آخرت کی جو ہے وہ فکر کرو. پھر آیت نمبر 12 جو ہے اس میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ اپنی صفات کا حوالہ دیتے ہیں. اللہ کی صفات کا جب ذکر ہوتا ہے یا اللہ کے اسماء کا جب ذکر کیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تاکہ لوگوں کا عقیدہ توحید محکم ہو، مضبوط ہو. اور جب اللہ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر بندوں سے تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں. جب بھی بندوں سے لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، اسی وقت جو ہے مرض کی تشخیص کر لیجئے کہ کچھ گڑبڑ ہے عقائد میں اور عبادات میں اور معاملات میں. اور جب عقائد میں گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر معاملات میں گڑبڑ ہوتی ہے، پھر اخلاق میں گڑبڑ ہوتی ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کیونکہ سورت طلاق ہے، اور سورت طلاق جس میں اتنے اہم گھریلو زندگی کے معاملات ڈسکس کیے گئے، اور اس میں جو ہے وہ घर की दुनिया से बाहर की दुनिया, घर की इकाई से जो है वो मुआशरे की इकाई, कौमों का जिक्र करके इबरत दिलाई गई, तंबीह की गई। तो आखिर में जो है वो अल्लाह का तारुफ, अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो जात जिसने खलका पैदा किया, सब आसमावातिन, सात आसमानों को, तो अल्लाह ताला की जात, तो वो जात है कि जिसने एक नहीं सात आसमान जो है वो पैदा किए हैं। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि आसमान एक नहीं है, कितने हैं? सात हैं। और वाहिद क्या है आसमान का? अस्समा और या समा, तो समावात उसकी जमा है। वमिनल अर्दी और जमीन की, मिन यहां पे की या से के मानी में है, मिसलहुन उसी की मिसल, यानी सात जमीनें भी पैदा की। अल्लाह वो है जिसने सात आसमान बनाए और जितने आसमान बनाए जमीन की किस्म भी उन्हीं की मानिद। उन्हीं की मानिद बनाने का फिर मतलब क्या है कि जितने आसमान हैं उतनी ही जमीनें हैं, उतनी ही जमीनें हैं। तो फिर मुफस्सरीन जो है वो इसकी तफसीर में ये कहते हैं कि समा के लुगवी मानी क्या होते हैं? बुलंदी के। और अर्थ के लुगवी मानी क्या होते हैं? पस्ती के। तो इस लिहाज से हम हर बुलंदी के मुकाबले में पस्ती को अर्थ कह सकते हैं और हर पस्ती के मुकाबले में बुलंदी को समा कह सकते हैं। हमारी जमीन पहले आसमान के मुकाबले में क्या है? अर्ध है। और पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में क्या है? अर्ध है। शाबाश। इसी तरह छठा आसमान सातवें आसमान के मुकाबले में क्या है? अर्ध है। उसकी वो अर्ध है, उससे नीचे की वो, निचले के लिए वो समा है। तो बहरहाल इस तरह कहते हैं कि सात आसमानों की भी सात आसमी जमीनें बन जाती हैं। एक तो इसके ये मानी है कि सात आसमान और सात जमीनें, और बहरहाल अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, दूसरे मफहूम इसका ये बताया गया है कि हमारी जमीन के ही सात तबकात या सात परत मुराद हों, तबकातुल अर्ध। हर तबका अर्ध जो है अपने से ऊपर वाले तबके के मुकाबले में अर्ध है। इसी तरह एक हदीस भी मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी दूसरे की थोड़ी सी भी जमीन नाहक ले ले तो कयामत के दिन सात जमीनों तक धंसता चला जाएगा। ये बुखारी की रवायत है कि सात जमीनों तक वो धंसता चला जाएगा। गोया कि जमीन के भी सात तबकात हैं। इसका तीसरा मानी भी बताया गया है और वो ये है कि ऐन मुमकिन है कि हमारी ही जमीन जैसी छह और जमीनें इस कायनात के अंदर मौजूद हों और वहां किसी जानदार मखलूक की आबादी भी हो। और आप इंसान को भी देखें तो इंसान तो खुद कायनात की वसत का अंदाजा नहीं कर सका, और इस सिलसिले में इंसान की अकल जो है वो थक चुकी है। मसलन जैसे अमेरिका के रैंड कॉरपोरेशन ने जो फलकी मुशाहदात का अंदाजा लगाया, वो कहते हैं कि जमीन जिस कहकशां में वाकया है सिर्फ उसी के अंदर तकरीबन 60 करोड़ ऐसे सैयारे पाए जाते हैं कि जिनके जो हालात हैं या जिनकी नेचर जो है ना, जिनके तबई हालात जमीन के हालात से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, और इस बात का इम्कान लगता है कि इनके अंदर भी कोई जानदार मखलूक जो है वो आबाद हो। तो आप देख लें कि ये तो हैं साइंसदानों की बातें, और अल्लाह ताला तो खुद कुरान में ये बात कह चुके हैं, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिउन, कि हमने अपने दस्ते कुदरत से आसमान को पैदा किया और हम हर घड़ी इसमें तौसी कर रहे हैं। तो अल्लाह वो है जिसने सात आसमान बनाए और जमीन की किस्म भी उन्हीं की मानिद, मिसलहुन उस उन्हीं की मानिद, यतनज्जलुल अम्रु बैनहुन्ना, इनके दरमियान हुक्म नाजिल होता रहता है। तो अल्लाह ताला की जात ऐसी बेहतरीन जात है, ऐसी मुरब्बी है, उसके फैसले इतने हकीमाना हैं कि अल्लाह का हुक्म जो है इनके दरमियान नाजिल होता रहता है। और हुक्म इलाही की दो किस्में हैं, आप पढ़ी चुकी हैं, एक हुक्म तशरी है और दूसरा हुक्म जो है वो कौनी है, है ना, पता है ना आपको, तशरी और तकवीनी। तशरी कौन सा हुक्म है? शरई, जो कि अंबिया के जरिए हमें दिया गया, इबादात, इखलाक, मामलात, मुआशरत के जो कानून हैं। और कौनी हुक्म जिसे तकवीनी हुक्म भी कहते हैं कौन सा है, जैसे तकदीर इलाही की का निफास, उसमें कमी बेशी जिसमें जिंदगी का फैसला मौत का फैसला अल्लाह कुन कह दे फयाकुन हो जाए, इसमें तो किसी का भी कोई इख्तियार नहीं है। तो दोनों तरह के हुक्म अल्लाह ताला नाजिल करता रहता है, कहां पे बेईना हुन, इन दोनों के दरमियान, किन के दरमियान, आसमानों और जमीन के दरमियान। अब ये बात अल्लाह ताला ने हमें क्यों बताई, लितालमू ताकि तुम जान लो, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मुझे बड़ी खूबसूरत ये आयत लगती है कि इंसान तू जान ले कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। तो ऐसे अहकामात का जो है वो जिक्र करने के बाद फिर अल्लाह ताला का ये कहना कि कायनात का ये राज जो तुम पर खोला है कि आसमान भी बहुत से हैं, जमीनें भी बहुत सी हैं, लेकिन अल्लाह की खुदाई जो इन पर कायम है, तो ये एक ऐसा राज है जिसको अल्लाह ने तुम्हें बताया है। क्यों? ताकि तुम इस हकीकत को समझ आओ कि अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। हम तो जो जाहिर नजर आता है बस उसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कायनात और इसके अंदर जो मेरे इंतजामात और तसर्रुफात है इंसान, तुम क्या जानो, इसलिए तुम समझ आओ अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। वह अन्ला, और ये भी कि अल्लाह का इल्म हर चीज पर मुहित है। इसके मानी ये हैं कि इसका दूसरा मकसद ये है कि सिर्फ अल्लाह की कुदरत ही की हद नहीं है, बल्कि अल्लाह के इल्म की भी कोई हद नहीं है। उसका इल्म तमाम जो कायनात है और तमाम जितने भी जो है वो आलम है, उन सब का जो है वो अहाता किए हुए है। तो ये है मेरा और आपका अल्लाह, मेरा और आपका रब, जो के कदीर है, जो के अलीम है, जो के खबीर है। तो आप देख लें कि सूरत तलाक की इब्तदाई आयतों में यही बात पड़ी थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो इल्म रखता है, वो जानता है। तो क्या करना चाहिए, फिर उसी से जो है वो सब लोग जो है वो डरें, उसी का तकवा इख्तियार करें। और सूरत तगाबुन में भी यही पड़ा, सूरत तगाबुन की इब्तदा में और एंड में भी था। एंड में क्या था, आलिमुल गैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुल हकीम, और यहाँ पे भी यही बात है। तो सूरत तलाक जो है फिर निचोड़ के तौर पर क्या बात मेरे और आपके सामने रखती है कि कायनात का हुस्न जो है वो इत्तेहाद और मोहब्बत में है, और कायनात का इत्तेहाद और मोहब्बत जो है वो घरों की मोहब्बत पर मुश्तमिल है, और घर जो है वो बनते हैं खानदानों से, और खानदान बनते हैं मर्द और औरत के वजूद से जब वो आपस में मिलते हैं, जब उनका निकाह हो जाता है। तो घरों को जो है वो खुशियों की इकाई बनाना चाहिए, जहां पे मोहब्बत हो, यहाँ पे यकजहती हो, इत्तेहाद हो। और ये बात जो है वो याद रखें कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिनके आपस में मसले मसाइल ना हो, क्योंकि आगे जो सूरत शुरू होने वाली है और वो सूरत जो है वो सूरत तहरीम है, और वो मसले मसाइल बताती है किसके, पैगंबर के घर की जिंदगी के, आयली जिंदगी के। पीछे आपने सूरत मुजादला भी पढ़ी, तगाबुन भी हमने पढ़ी, सूरत मुनाफिकून भी पढ़ी। इन सब सूरतों में हमने क्या पढ़ा, हमने यही तो पढ़ा कि जो है माल और औलाद फितना भी बन सकते हैं, और ये दुश्मन भी हो सकते हैं, सारे नहीं कुछ। इसी तरह जब छोटी मोटी मसले मसाइल हों, लड़ाइयां झगड़े हों, तो उनको इतना तूल ना दें, उनको इतना जो है वो इतनी ना बड़ा तंगिए दामा की हकायत, इतना लंबा नहीं करना चाहिए उसको, इतना दराज नहीं करना चाहिए कि फिर जो है इंसान टूट जाए, या फिर तलाक जो है हो जाए, या फिर खुला पर आकर खड़ा हो जाए। तो क्या करना चाहिए, अफो दरगुजर, सब्र व शुक्र उससे काम लेना चाहिए। तो शादी को कामयाब करने के उसूल क्या है, निकाह जो है उसको, उसकी गिरा को, उकदा तो निकाह जो है उसको बांध के रखने के उसूल क्या है, एक तरफ सब्र और शुक्र गुजारी, और दूसरी तरफ जो है वो अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ, और तीसरी तरफ जो है वो इग्नोर करना, दरगुजर करना, चलो कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों को तूल ना देना। इसके अलावा एक बात और भी मुझे बहुत अहम लगती है कि मियां बीवी के जो मामलात हो ना, उसमें हम ये बात मत भूलें कि मियां बीवी दोनों एक दूसरे के लिबास हैं, जैसे कि जिस्म के ऊपर लिबास होता है, दोनों का बहुत कुर्बत का, इत्तसाल का, मोहब्बत का, यगानगत का रिश्ता है। तो छोटी छोटी बातें जो है ना इर्द गिर्द नहीं बतानी चाहिए। बाज़ औक़ात जो है वो इधर मियां बीवी में लड़ाई होती है और उधर जो है सारे लोगों को पता होती है। दो बर्तन जहां पे भी होंगे आवाज तो पैदा हो ही जाती है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि उससे जो है झगड़े इतने हों कि, और झगड़े तब बढ़ जाते हैं जब दूसरों को इन्वॉल्व किया जाता है, गैर जरूरी इन्वॉल्व करना। और आजकल तो ऐसा लगता है कि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। पहले क्या था, कुछ फासले भी थे, कुछ कंप्यूटर भी नहीं था, ईमेल भी नहीं थी और सेल फोन भी नहीं थे, है ना। अब तो घर घर फोन और कमरे के अंदर फोन और घर में जितने लोग उतने फोन, और अब क्या करते हैं कि दहेज में एक सेल फोन भी लड़की को दे देते हैं। अब वो दुल्हन बनी हुई है, साथ साथ उसके कान को फोन है। भाई कोई बात नहीं, अल्लाह के सुपुर्द करो बेटी को, अल्लाह के सुपुर्द कर दो, भूल जाओ अब उसको, उसको भूल जाओ, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो बस फिर अब अल्लाह उसका जो है वो वारिस है, अल्लाह उसका मौला है। अब क्या है पल पल पर कि वो दुल्हन का सही इस्तकबाल नहीं हुआ और उनका जो जोड़ा तो बड़ा ही खराब था जो उन्होंने, और जो दिखाया था वो तो दिया भी नहीं, वो तो उन्होंने दूसरी जो थी ना उसको दे दिया जो उन्होंने कहा था कि ये बनवाया है। और अब क्या है कि वो वलीमे का खाना, और फिर लड़के ने अच्छा सलूक नहीं किया। पहले दिन से ही छोटी 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 बातें माँ को, बाप को, दोस्तों को, ईमेल, वो फेसबुक, और वो जो है वो और क्या करते हैं जो कंप्यूटर उसके ऊपर फोन पर जो मैसेज देते हैं उसको आप क्या कहते हैं, टेक्स्ट मैसेज, फिर वो भी भेज देते हैं, चलो फोन तो नहीं कर सकते चलो यही भेज दे। अब क्या है कि जो है अगर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा ना हो ना तो आपस में जो है ये निभा हो सकता है। तो मुझे आप इस पे वैसे सर्वे करना चाहिए कि तलाक कितनी है और तलाक जो है उसके असबाब क्या है। इसी तरह जो घर कामयाब है तो उसके जो है असबाब क्या है। हमारे जैसे लोग हैं बड़ा खुशी से बड़े अच्छे से रह रहे होते हैं, तो ना सिर्फ ये कि लड़की की माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट या लड़की के दोस्तों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, लड़के के माँ बाप की भी बाज जगहों पे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाती है। तो वो दोनों अब बालिग हैं, दोनों समझदार हैं, दोनों जिम्मेदार हैं, अब दोनों को अपना घर बनाने दिया जाए, खुद जिए और उनको जीने दिया जाए। अगर लड़के की माँ भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करेगी कि लड़की को ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों दे रहे हो, घुमाने क्यों ले जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो घर आबाद नहीं होगा। तो आप खुद भी सोचें कि अब बाज लड़की वाले तो ये कहते हैं कि ऐसी जगह बेटी का रिश्ता दें जहां पे सास ससुर हो ही ना, मर ही गए हो ना, और या फिर अगर जिंदा भी हो तो दूर लड़का दूर परिस्तान में मेरी बेटी को ले जाए। और उन परियों की ज्यादा तलाकें हो रही हैं, वो जो शहजादे हैं ना परियों की, आपस में माँ बाप जहाँ पे करीब है ना कोई पास है, कभी लड़के के माँ बाप समझाते हैं और कभी बेटी के माँ बाप समझाते हैं। और ये कि दरानी जिठानी से बेटी हमारी कभी रीस ना करे, अल्लाह ने मुख्तलिफ मिजाज रखे हैं, सबके हालात मुख्तलिफ हैं, तुम्हारा काम है कि तुम अच्छी बेटी बनकर रहो। तो अब क्या है कि अब वहां पे बस थोड़े दिनों के बाद तड़ाक तड़ाक अब यही सुनने को मिलता है, इधर तलाक, इधर अभी निकाह हुआ है तो तलाक, अभी लड़की गई है तो तलाक, अभी 4 महीने हुए हैं तो तलाक, और कल भी किसी का सुन रही थी कि तलाक। तो इतनी ज्यादा तलाक की रेशो है कि ये भी तो लगता है जैसे कयामत की कोई जो है ना अब एक निशानी है। और ये याद रखिएगा कि जिन कौमों के घरेलू हालात यानी जिन कौमों में खानदानी सिस्टम जो है मुअत्तल हो गया है या वो टूट फूट उसमें हो गई है, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि खानदान एक इकाई है, वहीं से बच्चे जो है परवान चढ़ने हैं। और अब सिंगल पेरेंटिंग, अकेली माँ जो है वो बच्चे को जो है वो बाप का प्यार नहीं दे सकती, और अकेला बाप बच्चे को माँ की शफकत और मोहब्बत नहीं दे सकता। दोनों मिलकर जो है जब यकजान होते हैं तो एक बेहतरीन खूबसूरत खुशहाल मोहब्बतों वाली सोसाइटी जो है वो वजूद में आती है। तो आप देख लें कि कुरान जो है खानदानी सिस्टम को इतना डिस्कस करता है कि 28वां पारा जब आपने इसका आगाज किया तो सूरत मजादला, फिर सूरत मजादला जब आपने पढ़ी तो उसके बाद जो है फिर सूरत हशर पढ़ी, उसके बाद मुमतहिना, उसमें भी بیوی بچے ازمائش بن گئے, ٹھیک ہے نا. پھر سورت صف اس نے بھی کہا کہ محنت کرو, مشقت کرو, کال فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, انصار اللہ بن جاؤ. پھر سورت جمعہ پڑھی, سورت جمعہ میں مال کی محبت سے منع کیا گیا اور کہا کہ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرح یہودیوں کی طرح نہ کرنا, جو قرآن علم ہے نا اس کی تم قدر کرو. پھر اس کے بعد منافقون, اس میں بھی نفاق سے بچو, اور یہ کہ تمہارے بیوی بچے تمہارے لیے دشمن بھی بن سکتے ہیں, ان میں سے بات. اور پھر سورت تغابن, ہار جیت کا دن. تو دنیا میں ہار جیت نہیں ہے, آخرت میں ہار جیت ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے پڑھی سورت طلاق, اور الحمدللہ الحمدللہ اب ہم 28ویں پارے کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں, بس ایک سورت باقی ہے. پھر ایسا وقت آئے گا کہ ایک پارہ باقی, اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ ایک سورت باقی, اور پھر ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ کہ ایک آیت باقی. لیکن سورتیں کم رہ گئیں, سپارے کم رہ گئے یا آیتیں کم رہ گئیں, ان سب سے بڑھ کر جس بات پہ سوچنا چاہیے کہ زندگی کے لمحات کتنے کم رہ گئے, زندگی کی گھڑیاں کتنی کم رہ گئیں. ہر گزرنے والا لمحہ میری اور آپ کی زندگی کے جو ہے اس کو کم کرتا جا رہا ہے. زندگی کی کتاب کا ایک صفحہ ہم ڈیلی پلٹ رہے ہیں. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. آج کسی کی موت کی بات کرتے ہیں, کل کوئی ہماری موت کی بات کرے گا, کوئی روئے گا. پھر ایک مسافر تھا, کچھ دیر ٹھہرا یہاں, اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی ہے, محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. تھوڑے دنوں کی بات ہوتی ہے جب کوئی آنسو بہاتا ہے, پتہ نہیں پھر اولاد کو بھی کتنا یاد رہتا ہے کہ ماں باپ چلے گئے. اسی سے خیال کر لیں کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کتنی دعا کرتی ہوں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو زندہ ہیں, کتنا ان کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. ہم بھی تو پھر اسی طرح ہیں نا, ہم آج کسی کی اولاد ہیں تو کل جو ہماری اولاد ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گی. اسی طرح یہ جو طلاق, خلا, لڑائیاں, جھگڑے, دوسرے جو انوالو ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ فارغ ہو جاتے ہیں. پھر اب سر اوکھلی میں دیا ہے تو پھر خود ہی ڈنڈے کھانے ہیں, پھر خود ہی رونا ہے, پھر خود ہی مصیبتوں پریشانیوں میں رہنا ہے. تو کیا کرے, صبر, برداشت. صبر اور برداشت جو ہے نا بہت ضروری ہے, نہ آج کے لڑکوں میں ہے نہ آج کی لڑکیوں میں ہے. اور آج کے لڑکے اور لڑکیوں کو کیا کہوں, مجھے لگتا ہے ہمارے اپنے اندر نہیں ہے, آج کل کے ماں باپ میں نہیں ہے. کیونکہ برتن کے اندر, جگ کے اندر جو ہوتا ہے وہ گلاس میں آتا ہے. تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے, لڑکے کے ہوں یا لڑکیوں کے, کسی کو ہم بلیم نہ کریں, لیکن یہ کہ یہ ہماری کشتی ہے, یہ ہمارا گھر ہے, یہ امت مسلمہ کی عزت کا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنی یوتھ کو, اپنے گھروں کو سنبھال سنبھال کر لے کر چلیں. اور محبتیں بکھیرے, اور جن گھروں میں ماں باپ میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں تو ان کے بچے پھر آگے جا کر کہاں خوشحالی کا نمونہ پیش کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.